जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्वपदांतिकम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
पिछले दिन हमने सुना था चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 10 का जो 10वां श्लोक है वहां तक हमने चर्चा की थी महाप्रभु का जगन्नाथ पुरी लौटाना और हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं रिकैप करता हूँ चैतन्य महाप्रभु के बारे में। जो राजा प्रताप रुद्र हैं वो सार्वम भट्टाचार्य के पास पूछताछ कर रहे हैं और राजा प्रताप रुद्र बहुत ईगर थे, बहुत उनके अंदर उत्साह या लौल्य था चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं सार्वम भट्टाचार्य को और उसमें वो कहते हैं कि राजा कहे जगन्नाथ छाड़े केने गेला। राजा ने कहा कि वो जो महांत हैं कृपामय चैतन्य महाप्रभु हैं वो जगन्नाथपुरी को छोड़ के क्यों गए, बताओ आप मुझे इसका उत्तर दो। तो सार्वम भट्टाचार्य ने कहा भट्ट कहे महान तेरा ए एक लीला। तो सार्वम भट्टाचार्य ने कहा कि जो महापुरुष होते हैं महंत, महंत को जैसे गौड़िया संप्रदाय में 64 महंताज हैं, 64 महंत हैं, उनमें ये 6 गोस्वामी और जगन्नाथपुरी के भक्त आदि, इन सबको मिलाकर 64 महंत कहा जाता है। तो महंत का मतलब है महात्मा, महंत का मतलब है महापुरुष, है ना, महंत का मतलब है महाजन। तो ये जो सारे नाम है वो भगवान के जो प्योर डिवोटीज हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए लागू होते हैं। तो सार्वम भट्टाचार्य कहते हैं कि ऐसे जो महापुरुष है उनकी यही लीला है, कोई जान नहीं सकता कि क्यों छोड़ के गए। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि जगन्नाथपुरी को उन्होंने छोड़ा क्यों। तो वो कहते हैं तीर्थ पवित्र करिते करे तीर्थ भ्रमान से ही चले निस्तारे सांसारिक जान। तो जो महापुरुष होते हैं वो कभी अपने लिए जीते नहीं है, ये महापुरुषों का लक्षण है। हाँ, और जो जैसे महात्मा है और जो दुरात्मा है, हाँ, जो दुरात्मा है वो सदैव अपने लिए जीवित रहता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते रहता है, अपने सुख के बारे में सोचता रहता है 24 घंटे। तो हम इस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में मैं अपने जीवन में दुरात्मा बनते जा रहा हूं या महात्मा बनने की ओर बढ़ रहा हूं, है ना। तो महापुरुषों का जो जीवन है वो अपने लिए नहीं है और वास्तव में इसी की प्रशंसा चैतन्य महाप्रभु करते हैं कई सारे अपने भक्तों को जब वो उपदेश देते हैं। तो इस भावना की प्रशंसा चैतन्य महाप्रभु ने की है, वृंदावन में कृष्ण ने बलराम के लिए भी की है। जब कृष्ण और बलराम गवे चराने के लिए जा रहे थे तो उस समय कई सारे वृक्ष नीचे झुक गए कृष्ण और बलराम को देखकर, उनमें फल ना पके हुए फल लगे थे, एक प्रकार से छाया बिछा भी रहे थे। तो कृष्ण ने कहा बलराम बलराम देखो देखो ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। बलराम ने कहा मुझे नहीं कर रहे, ये तो आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो कृष्ण ने ये जो वृक्ष है उनका गुणगान करना शुरू किया। तो भगवान महापुरुषों का जो तुलना है वो वृक्षन से करते हैं। वो कहते हैं कि काटिले ही जेन तरु किछु ना बोला है, बल्कि वृक्ष को काटो भी वो कभी कंप्लेंट नहीं करता क्यों मुझे काट रहे हो। कोई व्यक्ति काटता है, मारता है, पीटता है, फल तोड़ के खाता है, आधा काट के छोड़ता है और उसी पेड़ के नीचे बैठता है, फिर भी वृक्ष उसको छाया देता है ना। काटी ले ही तरु किछु ना बोला है। तो जो वृक्ष है उसका हर एक अंग यदि हम विचार करें तो वास्तव में अपने लिए नहीं है, किसके लिए? दूसरे के लिए है। उसकी छाया है, उसके टहनियां हैं, उसके पत्ते हैं, उसके फ्रूट्स है, उसकी छाल है, ये सब उसकी जड़े आदि है, जो भी जूस है और सब कुछ वृक्ष का केवल दूसरे के हित के लिए है। परोपकारार्थाय, साधु का जीवन क्या है? परोपकार करने के लिए। और वास्तव में हर एक व्यक्ति संसार में अपनी कीर्ति चाहता है, लेकिन वास्तविक कीर्ति कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? जब हम दूसरों के लिए जीना सीखे। और असली सुख या शांति कब व्यक्ति को, दिव्य आनंद किस चीज से मिलता है? जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो उससे जो सुख आपको मिलता है उसकी तुलना नहीं कर सकते, जब दूसरों के लिए जीते हो। और महाप्रभु का आंदोलन ऐसे लोग बनाने के लिए है, ऐसे महात्माओं का निर्माण करने के लिए आंदोलन है, जो वास्तव में अपने सुख की अभिलाषा को छोड़कर, अपनी इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा को छोड़कर जो दूसरों के लिए जिए, वो महाप्रभु के अनुयायी है। इसलिए कहा ब्रह्मांड तारिते धरे शक्ति धरे जने जने। ऐसा क्यों है? महाप्रभु के अनुयायी एक एक भक्त ऐसा है कि ब्रह्मांड को तारने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो वास्तव में अपने लिए जीवित नहीं रहता, वो सदैव सारे जगत के उद्धार के लिए सारे जीवों को महाप्रभु के चरण कमलों में समर्पित करने के लिए तत्पर है। अब देखो वासुदेव विप्र थे, वासुदेव दत्त थे, वासुदेव दत्त वो भी महाप्रभु जब उनसे मिले जगन्नाथपुरी में, जब रथ यात्रा के बाद सब वापस जा रहे थे तो महाप्रभु हर भक्तों से मिल रहे थे और हर एक का गुणगान कर रहे थे। जब महाप्रभु गुणगान कर रहे तो कुछ भक्त अपने कान बंद कर रहे थे, महाप्रभु प्रशंसा करते जा रहे थे, एक एक भक्त की प्रशंसा, सारे गुणों का वर्णन कर रहे थे एक एक भक्त के गुणों का। महाप्रभु ने वासुदेव विप्र को कहा, वासुदेव दत्त को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि सारे जगत के जो जीव हैं उनका उद्धार हो जाए और उनके सबके पाप मेरे सर में आ जाए और मैं नरक में सड़ता रहूं, मैं तैयार हूं इस चीज के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उसके तात्पर्य में कहते कि वास्तव में वासुदेव दत्त की ये जो भावना है ये जीसस क्राइस्ट से भी उत्तम है। वो कहते जो मेरे शरणागत होगा उसका पाप मैं लूंगा, लेकिन यहां वासुदेव दत्त कहते पूरे जगत के सारे जीव चाहे मेरी शरणागत हो या नहीं हो, आपके शरणागत हो या ना हो, आप क्या करो उनका उद्धार करो और उनके सारे पाप मुझे दे दो। तो महाप्रभु कहते भगवान कृष्ण का एक ही काम है, अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति करना। उन्होंने कहा क्यों तुम इसको सहोगे, कृष्ण उसके लिए तत्पर है। कृष्ण एक ब्रह्मांड जीवन से रहित हो जाए तो कृष्ण को कुछ हानि नहीं होने वाली। तो ऐसे बहुत सारा लंबा कन्वर्सेशन आगे भी आएगा शायद, तो महाप्रभु करते हैं। तो वास्तव में ये महाप्रभु के भक्तों का विशेष गुण है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा धिया वाचा प्राणेर अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। तो ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु बहुत उद्धृत करते थे। व्यक्ति को कैसे दूसरों के परोपकार के लिए लगना चाहिए, प्राणे अपना लाइफ लगा दो कृष्ण की सेवा में, अपना जीवन को समर्पित करो। ये जो नाशवान शरीर है प्राणे, कोई व्यक्ति कहते हैं कि नहीं नहीं मैं प्राण नहीं लगा सकता, अपना जीवन नहीं लगा सकता कृष्ण की सेवा में या न जगत की सेवा में, तो महाप्रभु कहते प्राण नहीं लगा सकते हो तो फिर अर्थ लगाओ, प्राणे अर्थे, अर्थे मीन्स धन लगाओ, क्योंकि प्राण किस में रह गया है व्यक्ति का, धन में है, इसलिए धन को कृष्ण की सेवा में लगाओ। प्राणे अर्थे, अर्थे नहीं लगा पाते, धन नहीं लगा पाते तो धिया बुद्धि को लगाओ, हाँ बुद्धि भी नहीं लगाओ पा रहे हो, हाँ अपनी वाणी को लगाओ कृष्ण की सेवा में। तो इस प्रकार से अलग अलग धरातल के लोगों के लिए अलग अलग समर्पण का चर्चा करते हैं। तो वास्तव में कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, प्राण चाहते हैं, अपना लाइफ चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो महापुरुष हैं, महांत हैं, हाँ वो इसका ये प्रमुख लक्षण है। श्रील प्रभुपाद को देखो, प्रभुपाद अपने लिए नहीं जिए, वास्तव में सारे जगत के लिए जिए। जितना भी उन्होंने कष्ट उठाया है पर्सनली, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना, उसको मेंटेन करना, तो सब प्रकार से श्रील प्रभुपाद वास्तव में दूसरों के लिए जिए थे। उनका जो जीवन है दूसरों के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित था। तो इसलिए महापुरुष, हम तो सब महापुरुष बनना चाहते हैं, नहीं हाँ, लेकिन महापुरुष बनने की बहुत इच्छा है हम सब में, लेकिन महापुरुष का जो आचरण है, महापुरुष का जो विचार है, उसको हम समझना नहीं चाहते। तो इसलिए महापुरुषों के कार्यों को समझना असंभव है, सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं। हाँ, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञना बुझाए, जो वैष्णव है महापुरुष है उनके जो कार्यकलाप है विद्वान व्यक्ति भी उसको समझ नहीं पाता, समझ नहीं सकता। तो आगे वो कहते हैं, फिर जब प्रताप रुद्र के अंदर बहुत तीव्र इच्छा थी महाप्रभु के बारे में सुनने के लिए, और महाप्रभु क्यों जगन्नाथपुरी छोड़ के चले गए ये जानने के लिए, तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य और बताने लगे। और वास्तव में यही है, आध्यात्मिक गुरु शिष्यों को वो देखते कि कितना उसका समर्पण है और कितनी लालसा है जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए, इस कृष्ण भावनामृत को कितना वो समझना चाहता है। गुरु तो एक गाय के समान है, नहीं तो गाय जब बछड़ा हूं के मारता है ना, उसकी जब पीने लगता है दूध, ऐसे ऐसे मारता रहता है, तो गाय का जो दूध का प्रवाह है और ढीला हो जाता है, उसकी जो स्तन है, थन कहते हैं, वो ढीला होने लगता है और दूध की धारा बहने लगती है। तो वही है लालसा, ईगरनेस जानने की कृष्ण के लिए। तो गुरु उस गाय के भांति है, गुरु का हृदय पिघल जाता है और वो सारा दिव्य ज्ञान ऐसा जो यज्ञ शिष्य है उसको ऊपर न दे डालते हैं, ऐसे दे देते हैं पियो। इसलिए तो बछड़े की तुलना किस, अर्जुन की किससे तुलना की है, बछड़े से। दुग्धामृतम गीता क्या है, अमृत है, दूध की तुलना गई। कृष्ण क्या है, ग्वाले है, और अर्जुन बछड़ा है एक प्रकार से। तो इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि अरे राजा प्रताप रुद्र बहुत डिटेल में जानना चाहता है महाप्रभु के बारे में, क्यों महाप्रभु चले गए। तो फिर और विस्तार से महाप्रभु के जो स्थिति है, ओरिजिनल जो सिचुएशन है चैतन्य महाप्रभु की, वो बताने लगे। उन्होंने कहा, तीर्थ पवित्र करिते करे तीर्थ भ्रमण, सही चले निस्तर सांसारिक जान। तो जो महापुरुष है वो जब ट्रैवलिंग करते हैं तो वो अपने लिए यात्रा नहीं करते। हाँ, यात्रा का मतलब है यातना, त्रायते इति यात्रा। यातनाएं कौन सी है हमारे जीवन में, जन्म मरण माला। गोपीनाथ भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि हे गोपीनाथ, मेरे जीवन में ये जो जन्म मृत्यु का माला है, अभी ये माला गले में डालना अच्छा लगता है, लेकिन ऑलरेडी हम एक माला में फंसे पड़े हैं, जन्म मरण माला। तो ये जन्म मरण की माला से निकलना बड़ा दुष्कर है। तो जो महापुरुष है वो यात्राएं करता है, लेकिन सबकी यात्राओं को अंतिम स्टॉप लगाने के लिए यात्रा करता है, फुल स्टॉप। हमारे जो जन्म मृत्यु की यात्रा है उसको फुल स्टॉप लगाने के लिए महापुरुष यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तीर्थों का भ्रमण करते हैं। तीर्थ पवित्र करिते करे तीर्थ भ्रमण। तो महापुरुष को कोई आवश्यकता नहीं है कि अपने लिए भ्रमण करे, उसका भ्रमण खत्म हो चुका है, उसको अपना डेस्टिनेशन मिल गया है। कौन है, कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति, कृष्ण के प्रति अपने हृदय में निश्चल प्रेम। वो तो महापुरुष या महंत ने अटेन किया है, लेकिन जब वो कृष्ण प्रेम का आस्वादन करता है तो वो ये सोचता है, अरे मैं अकेला ही क्यों इसका आस्वादन करूं। जब हम प्रसाद खाते हैं तो हम सोचते हैं कि अकेला होना चाहिए, कुछ स्पेशल प्रसाद मिले, केक मिले या समथिंग, महाप्रसाद का प्लेट मिले, हम पहले सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, साइलेंस। किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और खाते भी कैसे आवाज नहीं आनी चाहिए है ना। तो हम तो ऐसे दुरात्मा है, लेकिन महापुरुष का ये लक्षण है, महाभागवत का ये लक्षण है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति का जिसने आस्वादन किया है या कर रहा है, उसको लगता है अरे ये लोगों को भी कृष्ण भावना का आस्वादन करना चाहिए, ये लोग क्यों वंचित रहे, तो वो प्रयास करता है। हाँ, जैसे प्रभुपाद है, अभी अमेरिका में सारे लोग भौतिक सुख उपभोग में रसास्वादन कर रहे हैं, वहां जाकर प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, इससे भी बढ़कर कोई आनंद है, और वो आनंद क्या है, कृष्ण भावना का ये जो रस है। तो जो महापुरुष है उसको यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ, लेकिन वो यात्रा करता है किसके लिए, दो चीजों के लिए। एक तो है तीर्थ पवित्र करते, तीर्थों को पवित्र करने के लिए यात्रा करता है, और दूसरा सही छले निस्तार सांसारिक जन। और उस यात्रा के दौरान जो जो जीव उनके संपर्क में आता है उनका उद्धार करता है। महाप्रभु ने ये दोनों कार्य किए, अपने दक्षिण भारत की जो यात्रा थी, चैतन्य महाप्रभु ने इन दो कार्यों के द्वारा पूरे दक्षिण भारत के जीवात्माओं का उद्धार किया और सारे जो तीर्थ स्थान है, क्योंकि जब लोग कलयुग में बहुत अधिक पापाचार करते हैं, क्योंकि हर एक को पता है कि मैं कुछ ना कुछ पापाचार कर रहा हूं, मन में, वाणी में, शारीरिक स्थूल रूप से, है ना, सूक्ष्म रूप से हम पाप करते हैं, वो तो देखता नहीं कोई, लेकिन भगवान के जो विटनेस है, साक्षी है, वो तो देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, 10 दिशाएं, ये सब साक्षी हैं, हम भागवतम में कहा है, वो देखते हैं। लेकिन जो स्थूल पाप हम करते हैं तो उसको भौतिक जनमानस भी देखता है, और पाप के कारण हम भयभीत रहते हैं, सदा विचलित रहते हैं। विचलित क्यों रहते हैं, क्योंकि पाप करते रहते हैं, जिसके कारण हम स्थिर नहीं हो पाते और अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं लोगों के सामने कि मैं महापुरुष हूं, महान भक्त हूं। हाँ, तो फिर पापाचार करने के बाद व्यक्ति सोचता है थोड़ा सा शुद्ध होना चाहिए, तो इसलिए तीर्थों का सहारा लेता है, शॉर्टकट ढूंढता है। जब तो करना मुश्किल है, इसलिए शॉर्टकट क्या है, तीर्थों में जाओ, डुबकी लगाओ, दान दक्षिणा दो और पापों से मुक्त हो जाओ। तो जब ये तीर्थ है, हजारों हजारों पापी तापी लोग आते हैं और अपने पापों को छोड़ के जाते हैं, तो जो तीर्थ है, जो कुंड, नदी आदि, जो भी तीर्थ पर्सोनिफाइड पर्सनैलिटीज होती हैं, वो काले पड़ जाते हैं, खत्म, बिल्कुल उनके अंदर शक्तिहीन हो जाते हैं। हाँ, जब जो ये गंगा है, पृथ्वी में आने का श्राप मिला, तो पृथ्वी में जब आई, तो अब यहां जब वो आई तो उन्होंने सोचा, मैं पहले तो मना कर रही थी, नहीं जाऊंगी, वहां सारे पापी लोग आके स्नान करेंगे मुझमें, हाँ तो कैसे मेरा होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा था कि आप क्या, आपके इसमें जो पापी स्नान करेंगे, पापों को छोड़ेंगे, लेकिन जो महान भक्त आकर आपके जल में जब स्नान करेंगे, तो आप उन पापों का जो प्रभाव है उससे मुक्त हो जाओगी, क्योंकि महापुरुष के संपर्क में आने से भी, हाँ, ये जो तीर्थ है वो पवित्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो महापुरुष है, तीर्थों को उनकी शक्ति, क्योंकि महापुरुष या महान भक्त या साधु वैष्णवगण इन आध्यात्मिक धामों में, तीर्थों में यदि नहीं वास करेंगे, तो वो जो तीर्थ है, धाम आदि है, वो अपना प्रभाव खो देता है, प्रभाव कम हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। हाँ, इसलिए हम वर्णन आता है कि महाराष्ट्र में एक मुनि थे, मैंने बीच में भी क्लास में वर्णन किया था कि एक पुंडलिक नाम के एक एक, एक युवक था, जिसके माता पिता ने उसको बहुत बड़ा किया, बहुत देखभाल आदि की, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हो गया, वो इतना अत्याचारी हो गया, और जब उसने शादी की तो माता पिता को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रख रहा था, उनको पिटाई करता था, भगाता था। तो माता पिता ने सोचा बहुत अच्छा है कि तीर्थों का भ्रमण करने के लिए जाओ। तो जब वो तीर्थों के लिए भ्रमण करने के लिए चले गए, तो इसको कई सालों के बाद लगा कि नहीं नहीं माता पिता को ढूंढना चाहिए। तो अपने पत्नी को, कभी कभी माता पिता को लेके जाता था कुछ स्थानों में भ्रमण करने, तो पत्नी को कंधे में ले जाता था और माता पिता के गले में एक एक रस्सी बांध के उनको ऐसे पीछे से खींचते हुए ले जाता था। ऐसी बहुत बुरी हालत थी उसकी। जब माता पिता उसके इस कष्टमय आचरण से परेशान हो गए, छोड़ के चले गए, तब उसको पता चला कि माता पिता का कितना वैल्यू है। तो फिर ये जब जा रहा था तो रात्रि हो गई, एक एक कोई साधु थे, उनका एक आश्रम था, तो उस आश्रम के बाहर वो खड़ा हो गया। तो उस समय उसने देखा कि तीन जो युवतियां हैं बिल्कुल काली, कोयले से भी अधिक काली, वो अंदर संध्या के समय जा रही है उस आश्रम में। और ये इसने देखा उन युवतियों को, और जब वो गई और जब बाहर आई कुछ समय के बाद, तो देखा कि वो बहुत तेजवान है, रूपवान है, ऐश्वर्यवान है, और निकलते आ रहे जैसे कि परम सुंदरियां हैं। तो इसने उनको रोका, ओ सुनो सुनो सुंदरी, मैंने अभी अभी तो आप तीनों को देखा था कि आप बिल्कुल ही काली सी हो गए थी, निस्तेज हो गए थे, और अभी आप पूर्ण तेज आदि के साथ, सौंदर्य के साथ बाहर निकल आ रही है। तो उन्होंने कहा हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप बहुत पापी हो, ऐसे कुछ कुछ बोलने लगे। फिर उन्होंने बहुत निवेदन किया, तो इसने कहा कि हम कौन है, गंगा यमुना और सरस्वती, क्योंकि हम में ये जो पापी लोग है वो सारा अपना पाप धोते हैं, और उस पाप के कारण हम निस्तेज हो जाती हैं, म्लान हो जाती हैं, काली हो जाती हैं। तो हम क्या करती है, यहाँ आती है, उस मुनि का या साधु का नाम मैं भूल गया, यहाँ आती है और यहाँ उनके आश्रम को सफाई करती है, पानी भरती है, गोबर से लेपन करती है, सारी सेवाएं करती है, और इन सेवाओं के कारण, उस वैष्णव की सेवा के कारण हमारा वास्तव में जो पाप, जो पापी लोग छोड़ रहे हैं हमें, उससे हम मुक्त हो जाते हैं, और इसलिए हमारा जो तेज है वापस हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए, शास्त्र में ऐसे हजारों उदाहरण है कि वास्तव में तीर्थों का सामर्थ्य, तीर्थों की शक्ति इसी में है, जब तक वहां साधुगण है। इसलिए भक्तिनोद ठाकुर ने एक तो गीते लिख दिया इसके ऊपर, मन तुम्हें, हे मन तुम क्यों तीर्थों का भ्रमण करना चाहते हो। फिर वो कहते सात सप्तपुरी, अयोध्या, कांची, द्वारका, उज्जैन आदि, हरिद्वार, इन सबका क्यों भ्रमण करना चाहते हो। तीर्थ फल हय साधु संग, तीर्थों का असली फल क्या है, साधुओं की संगति। बस तीर्थों का भ्रमण किया और साधुओं का संग नहीं किया, तो ऐसे तीर्थ भ्रमण से कोई लाभ नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, तीर्थेर भ्रमण केवल मनेर भ्रम, तीर्थों का भ्रमण करना ये केवल मन का वह पोह है, मन का भ्रम है। सर्व सिद्धि है ये गोविंद चरण, सारी सिद्धियां गोविंद के चरणों में है। इसलिए भक्तिनोद ठाकुर उस गीत में कहते कल्याण कल्पतरु के, कि जय जय स्थाने वैष्णव गण, सही स्थान वृंदावन, जिस स्थान में वैष्णव गण है उनका वास है, जिस स्थानों में कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर वो जी रहे हैं और उनके नाम रूप गुण लीला का सदैव वो गुणगान उच्चारण करते हैं, वो स्थान वास्तव में वृंदावन है, वो स्थान असली तीर्थों से भी बढ़कर है। तो इसलिए भक्तों को भी एक शब्द तीर्थ कहा गया है। इसलिए सब वैष्णवगण या महापुरुष तीर्थ भ्रमण करते, पहले तो उस तीर्थ को पवित्र करने के लिए, और उस भ्रमण उनका एक बहाना है, उस बहाने से जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है निस्तारे सांसारिक जन, क्या है कि सांसारिक व्यक्ति को वो उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की ये जो यात्रा है, जिसके बारे में सारव भट्टाचार्य बहुत डिटेल में प्रताप रुद्र को बताते जा रहे हैं कि महाप्रभु का जाने का उद्देश्य तो ये है तीर्थों को पवित्र करना, और जो भी उनके संपर्क में आ जाए उन सांसारिक जीवों का उद्धार करना, ये उनका प्रमुख कार्य है। भवद्विदा भागवता तीर्थिभूता स्वयं विभो, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृथा। तो ये श्लोक कृष्णदास कविराज उद्धृत कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज की एक खासियत है, जो भी वो बात बताते हैं महाप्रभु से संबंधित, तो उसको शास्त्रों का रेफरेंस वो कोट करते हैं। कोई भी आप बात बोल रहे हो उसका आधार क्या होना चाहिए, शास्त्र होने चाहिए। हाँ जैसे वकील है, हाँ प्रभु जी वकील है, तो जब कोई बोलता है वहां हाँ कोर्ट में, तो रेफरेंस देता है दफा न्याय शास्त्र के अनुसार, न्याय शास्त्र तो नहीं क्या कहते लॉ बुक, लॉ बुक के अनुसार वो बोलते हैं कि इस ये हाँ दफा 300 क्या है, बहुत सारी दफाए है, तो इस प्रकार से वो बोलते रहते हैं ना, रेफरेंस देते हैं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद भी कहते थे कि एक भक्त को बहुत सक्षम होना चाहिए, जब वो अपने वाणी का इस्तेमाल करेगा भगवत सिद्धांत को जब बोलेगा तो क्या होना चाहिए, साथ ही साथ उसको वो स्थापित करे, शास्त्रों का आधार प्रस्तुत करे, उससे क्या होगा जो श्रवण करने वाले जो जनमानस है उन पर एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ ये व्यक्ति ऐसे हवा में बातें नहीं मार रहा है, गोलियां नहीं झाड़ रहा है, ये कहां से बोल रहा है, शास्त्रों से। इससे क्या होगा कि लोगों का जो फेथ है शास्त्रों में और फिक्स होगा, साधुओं में और फिक्स होगा, प्रोसेस में और फिक्स होगा। इसलिए हमें आलसी नहीं होना चाहिए, हमें जानना चाहिए और अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए शास्त्रों के रेफरेंस कोट करने के लिए। इसलिए कृष्णदास कविराज ने कई सारे संस्कृत श्लोकास को कोट किया है। कई बार कृष्णदास कविराज कहते हैं कि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये चैतन्य चरितामृत तो संस्कृत के श्लोकों से भरा पड़ा है, कहते मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं है, मैं सबके मनों को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो महाप्रभु और जो श्रोतागण है महाप्रभु की कथाओं को सुनना चाहते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए है, सबके मन का पूजन करने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, ऐसे क्या कहते कठोर भाषा में कृष्णदास कविराज वर्णन करते। तो वो कहते हैं इसी बात को स्थापित करने के लिए वो युधिष्ठिर महाराज ने जब विदुर जी के लिए श्रीमद भागवतम के पहले स्कंद में जो श्लोक बोला वो श्लोक का वर्णन कृष्णदास कविराज करते हैं, या फिर सारंग भट्टाचार्य उस श्लोक को बोल रहे हैं। वो कहते भवद विदा भागवता तीर्थी भूता स्वयं विभो, कि जो भगवान के भक्त है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो विदुर ने सोचा मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है, मैं तो अपना जा रहा हूं तीर्थों का भ्रमण करने के लिए। उन्होंने अच्छा चांस था, पॉजिटिव थिंकिंग, उनको दुर्योधन ने अपमान किया सबके सामने, ये रखेल का पुत्र है। हाँ अब कोई कहे ऐसा तो कितने ठेच पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे भाग लेना है, उन्होंने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया, कृष्ण की कृपा को सोचा और तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकले। और उसी तीर्थ भ्रमण में क्या कृपा हुई कि कृष्ण जब ये जगत को छोड़कर जाने वाले थे तो आखिरी किसी कितने लोगों से मिले हैं, तो वो दो या तीन लोगों से, उनमें से विदुर थे। हम अपने जीवन में हमेशा कोई विपदा आती है तो उसको हम कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार नहीं करते, भक्तों को हमेशा चाहे जो मर्जी हो जाए अपने जीवन में हमेशा कृष्ण की कृपा को देखे तो बहुत सरल हो जाता है, और वास्तव में कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर प्रकट होती है। तो विदुर जब भ्रमण कर रहे थे प्रभास क्षेत्र में, भगवान यदुवंश का विनाश करते हैं, तो फाइनली वो मैत्रेय को मिलते हैं, और मैत्रेय मुनि से विदुर के बारे में भी पूछा जाता है, और वहां से जब वापस आते हैं तो युद्ध समाप्त हो गया था, धृतराष्ट्र गांधारी बचे थे और इंद्रप्रस्थ में वो निवास कर रहे थे, तो सब लोग स्वागत करने के लिए बाहर आए कि विदुर आ रहे हैं। आए तो विदुर को देखकर ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा आपको तो तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चलते हुए तीर्थ हो। स्वांतस्तेन गदा भृता, गदा भृता मीन्स जो गदा को धारण करने वाले हैं, गदाधर कृष्ण आपके हृदय में निवास करते हैं, और आप इसी कारण से आप जहां जाते हो उस स्थान को पवित्र करते हो, आप कोई पवित्र होने के लिए तीर्थ यात्रा नहीं कर रहे थे, उस तीर्थ को पवित्र करने के लिए और जो भी आपके संपर्क में आ रहा है उसको पवित्र करने के लिए आप वास्तव में क्या करते हो, यात्रा करते हो। क्यों? क्योंकि आप भगवान के चिरंतन मतलब चिर संगी हो, नित्य संगी हो। तो इस प्रकार से सारंग भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र को कहते हैं वैष्णवे रई हय एक स्वभाव निश्चल तेहो जीवन है नहना स्वतंत्र ईश्वर। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन करते हुए जो सार्वभौम भट्टाचार्य है वो राजा प्रताप रुद्र को कहते हैं कि ये जो वैष्णव है वो तीर्थों की यात्रा करते हैं, एक तो तीर्थों को पवित्र करने के लिए और बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, तो ये वैष्णवों का कर्तव्य है। तो लेकिन सार्वम भट्टाचार्य प्रताप रुद्र को कह रहे कि आप मत समझना कि चैतन्य महाप्रभु कोई जीव है। वो कहते वैष्णवेर यही है एक स्वभाव निश्चल ते हो जीव नहेन। ये तो वैष्णवों का स्वभाव है कि तीर्थों को पवित्र करना, बद्ध जीव का उद्धार करना, लेकिन महाप्रभु जीव नहीं है। वो क्या है? हय स्वतंत्र ईश्वर, वे भगवान के महान भक्त हैं। तो इस प्रकार से सार्वम भट्टाचार्य आगे कहते हैं, राजा कहे तारे तुम्हें जाइते केने दिले, पाय पड़ी यत्न करे केरे न राखिले। तो राजा ने कहा कि हे सार्वम भट्टाचार्य, आपको पता था कि उनका जगन्नाथपुरी में रहना कितना महत्व है, मेरे राज्य के वो एक प्रकार से देखा जाए राज्य का गौरव है। एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ठाकुर वैष्णव गण अवनीर सुसंपद। अवनी मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी की कोई संपदा है या पृथ्वी में कोई हीरे माणिक्य है तो वो वैष्णव गण है। पृथ्वी गदगद हो जाती है, आनंद अनुभव करती है, भावावेश में आ जाती है जब वैष्णव गण उसके ऊपर चरण रखते हुए चलते हैं। जैसे कृष्ण जो ब्रज भूमि में वृंदावन में चल रहे थे तो पृथ्वी गदगद हो गई थी, कृष्ण के चरण कमल पृथ्वी में गिरते थे तो पृथ्वी देवी पुलकित हो गई थी भावावेश के कारण। तो उसी प्रकार से पृथ्वी को आनंद होता है जब वैष्णव गण नाचते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, और जब एक एक वैष्णव इस पृथ्वी को छोड़कर जाता है तो सबसे अधिक दुख पृथ्वी को होता है, क्योंकि वो क्या कर चुकी है, एक एक महत्वपूर्ण रत्न को उसने खो दिया है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ठाकुर वैष्णव गण अवनीर सुसंपद। तो ऐसे अवनी की संपदा है, वो ऑपुलेंस है पृथ्वी का। तो महाराजा भी कह रहा था, राजा की ये भावना थी कि ये मेरे राज्य का ऑपुलेंस है चैतन्य महाप्रभु का होना मेरे राज्य में। तो राजा कहे जारे तुम्हें जायते गेन दिले, हे हे सार्वम भट्टाचार्य, आपने उनको जाने क्यों दिया, क्यों ने उनके चरणों में गिड़ गिड़ाए, क्यों ने चरणों में गिर पड़े और उनको क्यों ने रोक के रखा आपने। तो मतलब कितना सार्वम भट्टाचार्य का अटैचमेंट होगा, बल्कि उन्होंने महाप्रभु को देखा नहीं है, महाप्रभु के बारे में अभी केवल सुना है, सुनकर इतना आसक्ति चैतन्य महाप्रभु के संग के लिए। तो वो देखेंगे, उनसे मिलेंगे तो कितना अधिक अटैचमेंट है। तो इस प्रकार से श्रवण करना प्रॉपर सोर्स से, और उन्होंने किन से सुना था, कई सारे वैष्णव से और विशेष रूप से उनके गुरु सार्वम भट्टाचार्य से सुना था। उन्होंने कहा आपको रोकना चाहिए था उनको, भट्टाचार्य कहे थे वो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र, साक्षात श्री कृष्ण ते हो नहे परतंत्र। तो भट्टाचार्य महाप्रभु का परिचय दे रहे हैं, मतलब महाप्रभु कौन है उसके बारे में क्लियरली स्थापित कर रहे हैं राजा प्रताप रुद्र के सामने, कि राजा प्रताप रुद्र को कोई संशय ना रहे कि महाप्रभु एक महान सन्यासी है, महाप्रभु एक महापुरुष है, महाप्रभु एक मिस्टिक योगी है, ये सब चीजें नहीं। तो क्लियर कट बता रहे हैं, भट्टाचार्य कहे थे वो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र, वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, साक्षात श्री कृष्ण ते हो नहे परतंत्र। और वो साक्षात कौन है? श्री कृष्ण। ऐसे भी नहीं कहा कि वो कृष्ण के ना कलयुग का क्या अवतार है, ऐसे भी नहीं बोला सार्वम भट्टाचार्य ने, साक्षात श्री कृष्ण ते हो नहे परतंत्र। और वो श्री कृष्ण है, वो क्या है? स्वराट है। भागवतम में कृष्ण के लिए वर्णन किया है कि वो स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र ईश्वर है। तथापि राखिते तारे बहु यत्न कैलो, ईश्वरे स्वतंत्र इच्छा राखिते नारे लो। सार्वम भट्टाचार्य ने कहा जितना मैंने प्रयास करना था ना उनको रोकने का कि दक्षिण भारत की यात्रा में मत जाओ, वो मैंने पूरा प्रयास किया, अपने आप को पूरा लगा दिया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो परम भगवान है, उनकी जो पूर्णतया वो स्वतंत्र है और मैं इसमें सफल नहीं हुआ। राजा कहे बट्ट तुम्हें विज्ञ शिरोमणि, तुम्हें तारे कृष्ण कह ताते सत्यमाने। ये शिष्य का गुण होना चाहिए, इतना विश्वास राजा प्रताप रुद्र का कि सारंग भट्टाचार्य ने जो बोला वो सत्य है, मतलब और कुछ डाउट नहीं। सारंग भट्टाचार्य ने कहा कि महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, तो शिष्य राजा क्या स्वीकार कर रहा है, हाँ वो कृष्ण ही है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान में आगे बढ़ने का यही उपाय है, मतलब जो गुरु कहे शिष्य को वो स्वीकार करना चाहिए और उसमें हाँ उसके उसका जो आध्यात्मिक जीवन है उसकी सफलता है। प्रभुपाद लिखते हैं आचार्य या प्रामाणिक गुरु के शब्दों को स्वीकार करना चाहिए जिससे आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग साफ हो सके, यही सफलता का रहस्य है। हाँ मनुष्य का मार्गदर्शक ऐसा आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जो पूर्ववर्ती आचार्य के आदेशों का बिना विचलित हुए दृढ़ता से पालन करने वाला हो। गुरु जो भी कहे उसे शिष्य को स्वीकार करना चाहिए तभी सफलता निश्चित होती है, यही वैदिक पद्धति है। तो मतलब कितना महत्वपूर्ण है राजा का जो फेथ है अपने गुरु सर्वम भट्टाचार्य की वाणी में, उन्होंने कुछ और नहीं बोला, कुछ तर्क वितर्क नहीं किया, आपने बोला है भट्ट तुम्हें विज्ञ श्रोमणि है, भट्ट आप सबसे विद्वान हो हाँ और पंडित हो, हाँ तुम्हें तारक कृष्ण कहे ताते सत्य माने, आप उनको कृष्ण कह रहे हैं मैं उसको सत्य मान रहा हूं। और वास्तव में ये सफलता है। उपनिषदों में कथा आती है कि एक युवक था, वो अपने गुरु के पास गया कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान से मुझे पुलकित हो जाना है, ये जीवन मिला है किस चीज के लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए भगवत भक्ति। तो गए तो गुरु ने कहा ना एक सेवा करनी पड़ेगी, तो वो कहते क्या सेवा, कहते मेरे पास ना 100 गाय है, ये 100 गौवों को ले जाना है आपको, और जब तक ये 1000 नहीं होगी तब तक वापस नहीं आना है, उसके बाद मैं ज्ञान दूंगा तुमको। अभी कितना फेथ चाहिए। वो यदि सोचने लगा कि ये कौन सी सेवा में मुझे लगाया, जो मेरे साथ ज्वाइन किया है वो तो आगे बढ़ गए भक्ति में, मैं पीछे रहेगा वो ये सब कार्यकलापों में। तो लेकिन उसने अपने उस गुरु के वाणी में इतना फेथ था, उन गौवों को ले गया, 100 गाय ले गया, और गुरु ने कहा था 1000 हो जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हें आध्यात्मिक नॉलेज प्रदान करूंगा सिखाऊंगा। तो 100 गायों के बाद कई साल बीते, फिर 1000 गाय हुई तो वो वापस आए। वापस आते ही उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु का चिंतन किया और कृष्ण का स्मरण किया, उसी क्षण उसके हृदय में सारा आध्यात्मिक ज्ञान धारा प्रवाह के समान प्रकाशित हो गया। आरना करिए मने आशा, उसने ये नहीं सोचा अरे कि मुझे कौन सी सेवा में लगा दिया, बर्तन घिसने लगा दिया केटी किचन का, वहां क्लास मिस हो रहा है, फिर बहुत सारी चीजें ना, कई बार हम भी ऐसे ही रख करते हैं, अरे मैंने ज्वाइन किया तब से मैं रोड में ही जा रहा हूँ, नहीं कई बार भक्त भी सोचता है कि जब से मैंने ज्वाइन किया तब से बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहा हूँ, लेकिन उसको पता नहीं इसी में क्या छुपा है, सारे आध्यात्मिक ज्ञान का सार है। तो ऐसे वो शिष्य ने जब देखा कि 1000 गाय हुई और वो वापस आया कृष्ण का और गुरु का स्मरण करते ही, वास्तव में उपनिषद कहते हैं कि सारा जो दिव्य ज्ञान है उसको स्फुरित हो गया। और यही सीक्रेट है सफलता का, जो कहा जाए अपने जो अधिकारी है गुरु वर्ग है, बस उसको बिना हिचकिचाट के बिना कापटे के जस्ट स्वीकार करो और फॉलो करो। हाँ जैसे महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था एकनाथ, तो एकनाथ में जिनका एक ही नाथ है, अनेक नाथ नहीं, एकनाथ कौन है, लॉर्ड विठला, हाँ भगवान विठल। तो ऐसे एकनाथ जब यंग थे, युवा थे, हट्टे खट्टे थे, ब्रह्मचारी थे, तो उनको बहुत वैराग्य आया, उन्होंने कहा ये जीवन बस कृष्ण की सेवा के लिए है, गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा उन्होंने प्राप्त किया और निकल पड़े भ्रमण करने के लिए। भ्रमण करते रहे, हरि नाम लेते रहे और गहन साधना आदि। तो उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर घर में थे, तो उनको कोई संभालने वाला नहीं था, तो उन्होंने सोचा हमारा कैसे होगा, हमें कौन ध्यान देगा। तो वो उनके गुरु के पास गए और गुरु को कहा कि ना आपका आदेश ये मान सकता है, इसको हमारे हमें कौन देखभाल करेगा, उस यदि आप उसको कहेंगे तभी हमें देखभाल कर सकता है। तो ये जो एकनाथ है भ्रमण करते करते अपने गांव के बाहर आ गए थे, दूर दूर से भ्रमण करके गांव के नजदीक आप पहुंचे, तो उसी समय उनके जो गुरु थे उन्होंने अपने उनके एकनाथ के जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं उनके पास एक लेटर दिया था, कहा कि ये लेटर जैसे एकनाथ मिले उनको दे दो। तो उन्होंने एकनाथ को देखा कि अरे अभी तो गांव के बाहर ही आया है, अच्छा मौका है, लेटर दे दिया। तो लेटर, गुरु ने लेटर दिया है, पूरा अपना चद्दर निकाला फैला दिया और ऐसे रिसीव किया कि आध्यात्मिक गुरु ने मेरे लिए लिखा है, मुझे संबोधित किया है। कितना बड़ा आदर हम गुरु के वाणी को स्वीकार करने के लिए। तो ऐसे एकनाथ ने उसको स्वीकारा और जब खोला तो गुरुजी ने लिखा था जहां तुम हो वहां ही रहना, जहां तुम अभी कहा था वो गांव के बाहर ही था, तो वो उधर ही खड़े हो गए और वहां देखा गया कि उधर ही उन्होंने नाम संकीर्तन शुरू किया, कृष्ण कथा शुरू की, सारे वो हजारों लोग आने लगे, उनसे श्रवण करने लगे और बड़े मंदिर बन गए लॉर्ड विठ्ठल आदि के। तो वो स्थान अभी भी आप जाते हैं तो वहां एक नदी के किनारे पैठन। हाँ, तो मतलब सफलता क्या है किसी भी भक्त के जीवन में, यदि वो अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी जो वाणी है उसको यथावत स्वीकार करता है तो वास्तव में वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत तीव्रता से रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। प्रभुपाद हमारे लिए आदर्श उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो कहा प्रभुपाद ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पालन करना शुरू किया। कोई अपने स्वयं की सुख की अभिलाषा नहीं, कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना आदि का उन्होंने त्याग किया। तो ऐसा ही सार्वभौम भट्टाचार्य के वाणी पर राजा प्रताप रुद्र का पूर्ण विश्वास था। और आगे भी आप देखोगे सार्वभौम भट्टाचार्य को बार बार कहते कि हमें मुझे मिलाओ मुझे मिलाओ, हमें कहते ना महाराज से मिलाइए, हमें महाराज से मिलाइए, गुरु से मिलाइए। लेकिन वास्तव में जब ऐसा कार्य करेंगे तो गुरु साक्षात ही आपको कॉल करेंगे और आपको कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब राजा प्रताप रुद्र को कहा कि वैष्णवेश पहनो और रथयात्रा के बाद जब महाप्रभु लेटते हैं थक जाते हैं नाचते हुए गाते हुए रथयात्रा के सामने और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं तब जाके उनके चरण सम्मान करो, लेकिन तुम्हें ना भागवतम का वो दो तीन अध्याय याद होने चाहिए श्लोक का। अध्ययन भी कितना आवश्यक है, है? तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने वो गोपी गीत और रास पंचाध्याय वगैरह राजा राजा भागवतम का इतना गहन अध्ययन आप सोच सकते हैं। तो राजा ने पूरा भागवतम का निचोड़ रास पंचाध्याय आदि बिल्कुल कंठस्थ थे, महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की जब उनसे सुना, हाँ, गोपी गीत को सुना, तव कथा अमृतम जब उन्होंने बोला तो जो विषय उनसे दूर रहने वाले है हाँ उनका महाप्रभु आलिंगन करते हैं राजा का। पुनरपि यह तार हैले आगमान एक बार देखी करे सफल नयान। तो उन्होंने कहा मेरे आंखों को में सफलता है ना, कृष्णावलोकन बिना फल नाही आन, नेत्रों का फल क्या है कृष्ण का निरंतर अवलोकन करना, मतलब देखना कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य को देखना। तो राजा कहता है पुनरपि यह तार हैले आगमन, जब पुनः वो दक्षिण भारत की यात्रा से या वापस आएंगे ना जगन्नाथपुरी, एक बार देखी, कितने बार देखना चाहता हूं मैं, एक बार। उनका एक बार देखना ही बहुत बड़ा बड़ी बात है। वो कहते एक बार मैं देखना चाहता हूं और अपने ये जो नेत्र है उनको सफल बनाना चाहता हूं। और वास्तव में इन इंद्रियों का अर्थ क्या है, इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय अर्थ विमूढ़ात्मा, इंद्रियों का अर्थ क्या है कृष्ण का दर्शन। जो हम इंद्रियों का अर्थ इंद्रिय विषय सोचते हैं, जैसे आंखों से रूप सौंदर्य रूप को देखना चाहते हैं, भौतिक रूप को, शरीर से किसी और का स्पर्श सुख का अनुभव लेना चाहते हैं हम स्पर्श से, कानों से भौतिक चीजों को सुनना चाहते हैं, जीवा से भौतिक वर्णन करना चाहते हैं या भौतिक चीजों का आस्वादन करना चाहते हैं, तो इन्हीं इंद्रियों का असली अर्थ है कृष्ण। और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को हम अनुभव कर सकते हैं, या इन इंद्रियों की सफलता इसी में है कि कृष्ण को देखा जाए, कृष्ण के बारे में सुना जाए, कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करे और कृष्ण कथा को सुने, कृष्ण भक्त या भगवान का आलिंगन आदि करे। भट्टाचार्य कहते हो आसीबे अल्प काले रहित तारे एक स्थान चाहिए विरले। अभी सेवा की बात करने लगे, बहुत हो गया आपने सुन लिया, अभी ना कृष्ण कथा सुनिए, अभी असली पॉइंट में आ जाओ। आपको मैंने बता दिया आप दास हो, कृष्ण परम भगवान है, अभी यहां तक सीमित नहीं है, आगे बढ़ो, अभी क्या करना है आपको, सेवा। तो उस दास भावना को रियलाइज करना है तो आपके पास कुछ सेवा होनी चाहिए। तो क्या सेवा है? तो महाप्रभु की पहली सेवा करने का मौका राजा प्रताप रुद्र को मिल रहा है। भट्टाचार्य कहे थे वो आसिबे काल अल्प काले, अभी ना बहुत समय हो गया है, लगभग 2 साल महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की, हम 2 हफ्ते के लिए भी नहीं जाते नहीं दक्षिण भारत की यात्रा में, 2 साल महाप्रभु ऐसे तो पैदल घूमे हैं। तो जब उन्होंने कहा थोड़े दिनों में आएंगे तो उनके लिए एक रहने का व्यवस्थित स्थान चाहिए। कैसा स्थान चाहिए? जो एकांत हो और शांत भी हो, उत्तम भी होना चाहिए और एकांत में भी होना चाहिए, और जहां शोर शराबा ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना केयर है, हाँ कितना अटेंशन है, सेवा मतलब अटेंटिव सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, आपको रहने के लिए स्थान देते जहां बहुत पिंग पोंग गंदगी मची हुई है कि हमने वैष्णव सेवा कर ली, लेकिन वास्तव में सेवा का मतलब है डिटेल में जाना, गो इन डिटेल्स, डिटेल्स प्रॉपरली माइन्यूटली चीजों को देखना, तो उससे और अधिक प्यूरिफाई होते हैं। तो कहते शीघ्र ही लौट आएंगे और उनके लिए आप रहने का इंतजाम कीजिए, एकांत में होना चाहिए और जगन्नाथ मंदिर से नजदीक भी होना चाहिए। ठाकुरे र निकट आर है बे निर्जने, एमत निर्णय करे देह एक स्थान है, मुझे एक ही स्थान चाहिए जो ठाकुर के निकट होने चाहिए। कौन से ठाकुर? जगन्नाथ देव, और निर्जन भी होना चाहिए। ऐसा कोई अच्छा स्थान है तो आप मुझे बताइए और प्रदान कीजिए महाप्रभु के लिए। राजा कहे ऐछे काशी मिश्रे र भवन, ठाकुरे र निकट है परम निर्जन। तो राजा को तो सब पता था कौन सा स्थान कहा है, तो राजा ने कहा, राजा ने उत्तर दिया कि हाँ एक स्थान है काशी मिश्रे र भवन, काशी मिश्र आलय। आप जाओगे जगन्नाथपुरी तो गंभीरा के उन दीवारों में लिखा है काशी मिश्र आलय, आलय में निवास स्थान। तो काशी मिश्र का जो भवन है, हाँ ठाकुरेरा निकट, भगवान जगन्नाथ के निकट भी है और थोड़ा दूर एकांत में भी है। एतक ही राजा रहे उत्कंठित हया, भट्टाचार्य काशी मिश्रे कहिल आसिया। तो इस प्रकार से जो राजा हैं चैतन्य महाप्रभु के पुनरागमन के लिए बहुत उत्कंठित रहे, और फिर जो सारंग भट्टाचार्य है वो गए किनके पास? काशी मिश्र के पास, उनको बताने के लिए। हाँ काशी मिश्र कहिल आसिया, उनकी जो इच्छा थी राजा की वो बताने के लिए काशी मिश्र के पास गए। काशी मिश्र कहे आमी बड़ा भाग्यवान, मोर ग्रहे प्रभु पादेर हवे अवस्थान। किसका अवस्थान होगा? प्रभुपाद का। हमें दिखता काशी मिश्र कहे आमी बड़ा भाग्यवान, एक्चुअली कितना उदार हृदय है, भगवान को अपना घर प्रदान करना है। लोग तो भगवान को एक कोने में रखते हैं, जैसे तिजोरी में पैसे रखते हैं ना, छोटी सी तिजोरी, वो भी बिल्कुल अननोन प्लेस में, वैसे भगवान भी एक, लोगों को लगते भगवान हमारे धन है इसलिए वो बिल्कुल छुपा के रखते हैं, पता ही नहीं चले। कुछ लोग तो ऐसे निठल्ले होते, बेड बेड बेडरूम में बेड के नीचे भगवान का स्थान बनाते, मतलब कितना अनुचित है। तो हम भगवान को कम से कम स्थान देना चाहते हैं और अपना स्थान बड़ा रखना चाहते हैं, हम फुल जाते हैं हम। तो इसलिए वास्तव में ये कहते कि मैं कितना भाग्यवान हूं, इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा मानस देह जो किचु मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। ये आइडियल एक भक्त का जीवन है या गृहस्थ का भी, जिसके पास जो भी संपदा है सुविधा है सब वास्तव में किसके लिए है? नंद किशोर कृष्ण के लिए है। अर्पिलो तुवापने मानस देह गेह, गेह मीन्स घर, भक्ति विनोद ठाकुर ने सही सही शब्द चूज किया है, पहले मन देह और गेह, तो इन सबको है नंद किशोर मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। तो ये जो काशी मिश्र है वो अपने आपको बहुत भाग्यवान समझ रहे हैं कि मोर ग्रह प्रभुपादेर हबे अवस्थान। मेरे घर में प्रभुपाद, प्रभुपाद मीन्स जो चैतन्य महाप्रभु हैं, हाँ उनका अवस्थान होगा, वो निवास करेंगे आकर। ये मत पुरुषोत्तम वासी जत जान, प्रभु के मिलित सबार उत्कंठित मान। तो जितने भी पुरुषोत्तम वासी थे जगन्नाथपुरी के निवासी, सबके अंदर बहुत उत्कंठा थी महाप्रभु को मिलने के लिए। और यही चीज है भगवत धाम जाने के लिए, यही चाहिए, कितनी उत्कंठा है आपके पास। हाँ जैसे हम अपने घर जाने के लिए उतनी उत्कंठित रहते हैं, अपने अपने स्थान में जाने के लिए कितना उत्साहित रहते हैं, तो वैसे ही है। बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, ये बोलने में अच्छा लगता है, केवल बैक टू होम, बैक टू होम। वैकुंठ का स्मरण नहीं होता, अपने घर का स्मरण होता है। हाँ? तो वैकुंठ जाने के लिए उत्कंठा चाहिए, तो वैसे ही भगवान को मिलने की उत्कंठा। हमें सोचना चाहिए सही में भगवान को मिलने के लिए दिन भर में कार्य कर रहा हूं क्या, किस चीज के लिए उत्कंठित रहता हूं मैं, कुछ और चीज के लिए। अपने छोटे छोटे इंद्रिय तृप्ति के लक्ष्य हमने बनाए हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम सदैव उत्कंठित रहते हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन भगवान को मिलने के लिए, भक्तों को मिलने के लिए और भगवत भजन करने के लिए हमारे पास उत्कंठा नहीं है। उत्कंठा का पता चलता है दर्शनार्थी होती है तो हमें पहले पहुंचना चाहिए वहां। हम अपने आप को देख सकते कि कितनी उत्कंठा है मुझे। हाँ ये आवश्यकता नहीं कि महाप्रभु आने चाहिए या कृष्ण आने चाहिए, वो राधा गोविंद उधर है, कितने उत्कंठित है हम, कितनी बार जाके मैं दर्शन करता हूँ, कितनी बार उनके बारे में सोचता हूँ, नहीं कोई उत्कंठा नहीं है। हाँ मैं केवल नाम के लिए भगवत भजन में यहाँ बस बैठा हुआ लगा हूं। तो सारे जो जगन्नाथपुरी के भक्त थे महाप्रभु को मिलने के लिए इतने अधिक उत्सुक हो गए थे, उनके अंदर बहुत लौल्य था। सर्वलोके उत्कंठा जबे अत्यंत वाढ़िला, महाप्रभु दक्षिण आए थे तब ही आईल। यही है उत्कंठा, जितनी तेज तीव्रता से बढ़ेगी उतने जल्दी ही कृष्ण को आप अपनी ओर आकर्षित कर लोगे। कितनी तीव्र मिलन की उत्कंठा है, जैसे व्रतरास रूपाख्यान जो भागवतम में है उनमें वर्णन आता है कि जो गाय है वो बछड़ा बंधा होता है तो बछड़ा हमेशा ऐसे बंधा हुआ है फिर भी वो छोड़ के भागना चाहता है गाय को मिलने के लिए, गाय का दूध पान करने के लिए। तो गाय अपने बछड़े का वो उत्कंठा देखती है तो देखने मात्र से उसका वो मिल्क ये होने लगता है, निकलने लगता है, कितने उत्कंठित है। हाँ तो इस प्रकार से उत्कंठा जब हमारे पास होगी तब वास्तव में कृष्ण प्रकट होंगे। तो महाप्रभु को सब पता था कितने लोग उत्कंठित है वहां, मैं तब वहां जाऊंगा। आध्यात्मिक गुरु भी वैसे ही है, वैष्णवगण भी वैसे ही है कि कितने लोग उत्कंठित है तभी वो पहुंचते वहां, उत्कंठा ही नहीं है तो वो पहुंचते नहीं है। तो ऐसे ही महाप्रभु को पता चला कि अरे सारे जगन्नाथपुरी के भक्तों की उत्कंठा इतनी बढ़ गई है कि महाप्रभु दक्षिण भारत से फिर उसी समय लौट आए जगन्नाथपुरी में। सुनि आनंदित हैल सभा कारमान, सबे आसी सर्वभौमे कैल निवेदन। तो जब महाप्रभु आए जगन्नाथपुरी में तो सबको पता चला, सब बहुत प्रसन्न हो गए। और उस समय जो जगन्नाथपुरी के निवासी हैं वो सारे सार्व भट्टाचार्य के पास आ गए उनसे निवेदन करने के लिए। प्रभु रसहित आमा सबार कराह मिलन, तुम्हारा प्रसादे पाए प्रभु रचरण। ये आइडियल ये है कैसे अप्रोच करना है आध्यात्मिक गुरु या फिर कृष्ण को, कैसे वो सारे वैष्णव आए भगवान को कैसे अप्रोच करना है, कोई मेडिएटर होना चाहिए बीच में। नहीं रविंद्र स्वरूप प्रभु प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो एक बार बता रहे थे, मुझे इतना याद नहीं अभी, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं हमेशा सोचता हूँ ये बीच में प्रभुपाद क्यों है, मैं और कृष्ण बस। एक बार कहते मैं ऐसे रोते रोते गया अपने घुटनों पर और इसमें कि बस मुझे क्षमा करो कि ये क्या है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आप बीच में क्यों हो मेरे, कृष्ण और मैं बीच में नहीं होने चाहिए कोई। तो वैसे ही लेकिन जगन्नाथपुरी के भक्त जानते थे तो सब महाप्रभु से मिलने के लिए तत्पर थे, तो उन्होंने सार्वम भट्टाचार्य से निवेदन किया। प्रभुर सहित आमा सवार कराह मिलन, आप महाप्रभु के संग में हमारा मिलन कीजिए, उनसे मिलवाइए, भेंट करवाइए। तुम्हारे प्रसादे पाए प्रभुर चरण, और आपके कृपा के कारण ही, आपका आपके कृपा बल के कारण ही महाप्रभु के जो चरण कमल हैं उनके हमें प्राप्ति हो सकती है। यश प्रसादात भगवत प्रसादो, यश प्रसादात न गति कुप्तोपि। तो वास्तव में चैतन्य चरितामृत कितना परफेक्ट साइंस है, नहीं हर एक जो डिवोटी एक्ट कर रहा है ये परफेक्ट एक्टिंग है, हाँ बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल है। तो महाप्रभु आ भी रहे हैं तो ऐसे नहीं कि वो सीधे जाके उनकी कृपा के लिए आगे याचना कर रहे हैं, सारोम भट्टाचार्य के माध्यम से, वो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी कृपा से हाँ वास्तव में महाप्रभु की कृपा सबको मिल सकती है, इस भावना से वो सब अप्रोच कर रहे हैं। इसलिए आध्यात्मिक गुरु का होना, पारदर्शी आध्यात्मिक गुरु का होना हर एक भक्त के जीवन में परम आवश्यक है। भट्टाचार्य कहे काले काशी मिश्रे रघरे, प्रभु जाई बेनता मिला वसबारे। तो भट्टाचार्य ने सारे लोगों से कहा कि कल जो महाप्रभु है काशी मिश्र के घर में होंगे, और तब मैं आप सबका उनसे मिलन कराऊंगा, हाँ मिलाऊंगा। आरदिन महाप्रभु भट्टाचार्य संगे, जगन्नाथ दर्शन कैल महारंगे। तो दूसरे दिन, अगले दिन जब महाप्रभु आए तो उसके बाद उन्होंने सार्वम भट्टाचार्य के संग में बहुत ही उत्सुकता के साथ, आनंद के साथ, हाँ जगन्नाथ टेम्पल में गए और जगन्नाथ का उन्होंने दर्शन किया। महाप्रसाद दिया तहा में लीला सेवक गान, महाप्रभु सभा कारे कैल अलिंगन। तो वहां के जो सेवक थे जगन्नाथ के, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को महाप्रसाद आदि दिया जगन्नाथ का, और उसके बदले में ददाते प्रतिग्रहणाते, दोनों होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा इन्होंने प्रसाद दिया है तो महाप्रभु के मेरे पास क्या है देने के लिए, आलिंगन। तो उन्होंने उनका आलिंगन किया, हाँ वन वे ट्रैफिक नहीं, टू वे। दर्शन करे महाप्रभु चले ला बाहिरे, भट्टाचार्य अनिल तारे काशी मिश्र घरे। तो दर्शन करने के बाद सर्व भट्टाचार्य ने उनको लेके आए काशी मिश्र के घर। काशी मिश्र आसी पड़ी ल प्रभुर चरणे, ग्रह सहित आत्मा तारे कैल निवेद निवेदने। तो काशी मिश्र आए, काशी मिश्र ने पहले कहा था कि मेरा बड़ा भाग्य है महाप्रभु मेरे घर में रुकेंगे, और अभी साक्षात महाप्रभु आए उनके घर में, वहां उनके चरणों में वो समर्पित हो गए, गिर गए उनके चरण कमलों में, और उन्होंने कहा ग्रह सहित आत्मा तारे, अपना घर महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, उसके अलावा अपने आप को भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित किया। दो चीजें हैं, हम धन लगा सकते भगवान की सेवा में, अपने आप को नहीं लगाते हम, तो दोनों चीजों की आवश्यकता है भगवत सेवा में। प्रभु चतुर्भुज मूर्ति तारे देखा इला, आत्म साक्षात करे तारे आलिंगन कैला। यही है, पूर्ण समर्पण से ही भगवत दर्शन संभव है। षडंग शरणागति है बे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। शरणागति के पहले सॉन्ग में भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं, ये नंद कुमार जो कृष्ण है ना, किसकी प्रार्थना सुनते बताओ बताओ। तो उन्होंने कहा एक ही व्यक्ति की प्रार्थना सुनते, षडंग शरणागति है बे जहार, छह प्रकार की जो जिसमें शरणागति है उसकी प्रार्थना नंद महाराज के पुत्र सुनते हैं, और आत्मसमर्पण आत्मनिवेदनम उसमें सारी चीजें मिली हुई है, पूर्ण समर्पण है। तो ऐसे काशी मिश्र ने अपना घर दे दिया, अपने आप को महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, अपना अमारा बलिते प्रभु आर किछु नाय, अमारा बलिते मतलब अपना कहने के लिए है कृष्ण मेरे पास कुछ नहीं है, इस भावना से समर्पण किया उन्होंने। तो महाप्रभु ने क्या किया, प्रभु चतुर्भुज मूर्ति तारे दिखाई ल, सार्वम भट्टाचार्य को कितनी भुजाएं दिखाई थी, छह, और यहाँ काशी मिश्र को अभी चार, चतुर्भुज मूर्ति उनको दिखाया, और महाप्रभु ने उनकी सेवा को स्वीकार करते हुए और उनको क्या किया, तारे आलिंगन कैलक, और उनका आलिंगन किया। आलिंगन करना मतलब यही है कि उनकी सेवा को चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया है। तवे महाप्रभु तहा वसीला आसने, चौदह के वसीला नित्यानंदादि भक्त गणे। तब चैतन्य महाप्रभु वहां बैठ गए आसन पर और नित्यानंद प्रभु आदि जो सारे भक्त हैं उनके इर्द गिर्द चारों ओर बैठ गए। सुखी है ला देखी प्रभु वासर संस्थान, यही वासा है प्रभु सर्व समाधान। तो महाप्रभु भी अपना जो स्टेइंग फैसिलिटी है हाँ उसको देखकर बहुत सुखी हो गए। सुखी है ला देखी प्रभु वासर संस्थान, अपने निवास स्थान को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने सोचा यही वासा है प्रभु सर्व समाधान, और जिसमें सारी आवश्यकताएं जो महाप्रभु को आवश्यक थी हाँ उनकी पूर्ति का ध्यान रखा गया था। सार्वभौम कहे प्रभु योग्य तुम्हार वासा, तुम्हें अंगीकार कर काशी मिश्रे राशा। तो सार्व भट्टाचार्य ने कहा कि ये जो स्थान है आपके रहने के लिए अनुकूल है, कृपा करके जो काशी मिश्र की आशा है उनकी इच्छा है कि आप उनके इन सेवाओं को स्वीकार करें, इसको आप पूर्ति कीजिए। प्रभु कहे यही देह तोमा सभाकार, जेई तुम्ही कह से सम्मत आमार। महाप्रभु अभी अपने भक्तों के अधीन हो गए हैं, महाप्रभु अभी स्वतंत्र नहीं रहे। महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे यही देह तोमा सभाकार, ये जो मेरा शरीर है ना ये आप सबके लिए है, आप सबका है। जेई तुम्ही कह से सम्मत आमार, और जो आप कहोगे वो मुझे स्वीकार है। मतलब सेवा के द्वारा भगवान को आप परिचय कर सकते हो, भगवान को आप अपने अधीन कर सकते हो। तबे सार्वभौम प्रभु दक्षिण पार्श्वे बसे, तो सार्व भट्टाचार्य दाहिनी ओर बैठे। मिलाई ते लागिला सब पुरुषोत्तम वासी, तो फिर वो एक एक भक्तों को मिलाने के लिए तत्पर हो गए। यही सब लोक प्रभु वैसे नीला चले, उत्कंठित हयाचे सवे तोमा मिला मिली बारे। तब सार्व भट्टाचार्य ने कहा कि ये जो सारे लोग हैं जगन्नाथपुरी के निवासी हैं और बहुत अधिक उत्कंठित हैं आपसे मिलने के लिए। क्योंकि सार्व भट्टाचार्य अभी एक एक भक्तों को महाप्रभु से मिला रहे हैं, और इतना अमेजिंग है महाप्रभु को उनके उनके गुणों के बारे में बोल रहे हैं, उनके नाम का बारे में बोल रहे हैं, उनके कार्यकलापों के बारे में बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हरेक के बारे में सुन रहे हैं, हरेक भक्त को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से सार्व भट्टाचार्य के माध्यम से सारे जो नीलाचल वासी है पुरुषोत्तम वासी है चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं, जिसकी चर्चा हम